नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं इस समय संजीव कुमार। नमस्कार संजीव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार।
जी हां, और आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में। उधर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा रिकर्व में दीपिका कुमारी ने सेमीफाइनल में जगह बना दी। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से जारी। और टेबल टेनिस में ब्राजील के रियो द जेनेरियो में डब्ल्यूटीटी कंटेंडर में मानुष उत्पल भाई शाह और मानव विकास ठक्कर की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और सबसे पहले बात बैडमिंटन कोर्ट से, जहां बहुत ही अच्छी खबर मिल रही है। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यू को 21-13, 14-21, 21-12 से पराजित किया। कल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफन से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अश्मिता चालिहा को चीन की झांग ई मान से हार का सामना करना पड़ा। उधर पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज को मलेशिया के जी जिया ली से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद गरागा की जोड़ी भी हार गई। महिला डबल्स में भी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को ताइवान की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। आज का जिस तरह से मुकाबला हुआ पीवी सिंधु का, उसको देख के लगा कि पीवी सिंधु इज बैक, क्योंकि विश्व की छठे नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यूई को हराया और चोट से उभरने के बाद जिस तरह से वापसी की और पहली बार शायद किसी टूर्नामेंट के अब सेमीफाइनल में पहुंची है चोट से उभरने के बाद।
बिल्कुल, हालांकि आप अगर देखें तो ये अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सिंधु ने जो मैचेस जीते हैं, चाहे ये क्वार्टर फाइनल मैच हो या इसके पहले वाले राउंड में, उन्होंने वो मैच आसानी से नहीं जीते हैं। वो तीन गेम में मैच खत्म हुआ और ये उनसे ऊपर के सीट की प्लेयर हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट महिलाओं में पहली पांच जो रैंक वाली खिलाड़ी हैं वो इसमें नहीं खेल रही हैं, तो कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है। और दो खिलाड़ी और थी, वो रत्नचौक इंतनन और दूसरी एक और, वो बाहर हो चुकी हैं। अब सिंधु के लिए अच्छी बात ये होगी कि अगर वो जीत जाए, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है और इंजरी थी, उसके बाद उन्होंने ब्रेक भी लिया था पिछले जो एशियन और वो चैंपियनशिप थी उसमें से उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। और मुझे लग रहा है कि ओलंपिक्स में वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, इकलौती खिलाड़ी हैं विमेंस में
जी,
सिंगल्स में। तो ये चाह रही होंगी कि जब हम वहां जाएं टुवर्ड्स ये पेरिस ओलंपिक्स, तो कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, कोई टूर्नामेंट हम जीत के जाए। तो ये टूर्नामेंट अगर जीतती हैं तो ये आपने कहा कि सिंधु इज बैक, वाकई फिर लगेगा कि हाँ वापसी कर चुकी हूं, क्योंकि अभी खेल जो इंजरी थी उसके अलावा खेल तो है ही है उनका। कभी कॉन्फिडेंस लैक होता है तो लगातार आप हारते चले जाते हैं, और एक बार जब टूर्नामेंट जीत जाएंगी तो मुझे लग रहा है कि फिर से जो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो आने वाले जून में कुछ टूर्नामेंट जरूर खेलना उनको, और जुलाई में फिर ओलंपिक्स तो है ही है।
जी हाँ, जिस तरह से अब आपने बताया कि अगर एक बार थोड़ा सा बूस्ट अप मिल गया तो आगे भी उनको मदद मिलेगी ओलंपिक खेलों में। तो अब आगे बढ़ते हैं, तीरंदाजी की ओर जाते हैं। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने कड़े सेमीफाइनल में मेजबान देश दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक पक्का कर लिया। हम लगातार देखा जाए तो संजीव जी, तीरंदाजी के जो खेल है उसमें निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और इससे पहले बुधवार को ज्योति, परनीत कौर और अदिति स्वामी की कंपाउंड महिला टीम ने भी फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया।
देखिए, ये तो वर्ल्ड चैंपियन है, ये सारे जो ज्योति ने तमाम टूर्नामेंट्स में कहें तो अच्छा प्रदर्शन किया है। और लेकिन यहां से अगर हम देखें ओलंपिक्स की तरफ
जी।
तो जो ये कंपाउंड का हम बार बार लेते हैं कि कंपाउंड में अच्छा किया और वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता और रिकॉर्ड बनाया, तो दुर्भाग्य से ये इवेंट वहां होता नहीं है, रिकर्व में प्लेयर्स जाते हैं। और अभी हम देखें तो एक ही प्लेयर ने मेंस में इंडिविजुअल में क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। और आर्चरी एक ऐसा खेल है, शूटिंग में भी है, कि वो साल में हमें लगता है ना जैसे वर्ल्ड कप बोल रहे हैं तो कई चरण होते, चार चरण में होते हैं, तो वो चार साल में एक बार नहीं होता, एक साल में चार बार होता है। तो ये लगातार अच्छा कर रही है, लेकिन इनके लिए अच्छी बात भी है और एक हमारे लिए अफसोस की बात होती है कि काशीय इवेंट जो है इनका वहां होता तो ये वहां से भी मेडल लेके आती है। और दीपिका ने भी
जी हाँ
क्योंकि रिकॉर्ड में है,
स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई,
तो वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि दीपिका शादी करने के बाद, मां बनने के बाद और वापसी करने के बाद वो लगातार अच्छा कर रही हैं, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर ये भी है
जी। और वे रिकर्व में इस टूर्नामेंट में अकेली भारतीय खिलाड़ी बची हैं। क्वार्टर फाइनल में दीपिका ने तुर्की की एलफबेरा गोइकोर को 6-4 से हराया। सेमीफाइनल में दीपिका का सामना दुनिया की नंबर 2 तीरंदाज दक्षिण कोरिया की लिम सियान योन से होगा। और आगे बढ़ते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। जी हां, आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना इस समय राजस्थान रॉयल्स से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 14वें ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। संजीव जी, देखा जाए तो आज के मुकाबले में जैसे हम देख रहे थे कि एक ट्रेविस हेड और अभिषेक की जोड़ी शायद कुछ कमाल कर पाए, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब हुआ था इनका पहला क्वालिफायर तो उसमें नहीं चले थे, और ट्रेविस हेड से बहुत उम्मीद की जाती है कि अच्छा खेले, पर आज भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा की पावर हिटर जो है, ये दोनों अब ट्रेव शेक बोलते हैं जिनको, वो 12 रन बनाकर आउट हो गए
जी। अभी स्कोर जो है वो जो देख के लग रहा है और जितने ओवर्स बाकी हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ता है इसी तरह, 5 विकेट 120 रन है, 14वां ओवर चल रहा है, एक ही उनके अभी जो बल्लेबाज बचे हैं हेनरिक क्लासेन, बल्लेबाज तो और भी हैं लेकिन ये ऐसे हैं जो रह जाएं तो कुछ भी संभव है, 200 तक पहुंच सकते हैं
जी, जी।
लेकिन चेन्नई के चेपक जो मैदान पे हो रहा है, ये वहां पर कौन सा स्कोर एनफ होगा, पर्याप्त होगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां अगर पिछले जो इस सीजन में मैच खेले गए हैं, एक टीम जो है 210 रन बना के भी चेन्नई की टीम हार गई थी, और कुछ मैचेस कम स्कोर के हुए हैं, 162 रन बनाए तो उसको आसानी से हासिल कर लिया चेन्नई ने, पंजाब का जो मैच हुआ था, चेन्नई पंजाब का, इस तरह जो पिछला मैच हुआ था यहां पे जो खेला गया था लीग स्टेज में, वहां पर 141 रन बना था, तो कौन सा टारगेट यहां पर देना रहेगा कि जो पहले बैटिंग कर रही है उसके लिए लगेगा कि वो जीत सकती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिस तरह का मुकाबला है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो इनको कम से कम मुझे लग रहा है 175 प्लस का स्कोर बनाना होगा,
क्योंकि इस पिच का अगर वैसे एक थोड़ा असंभवता देखा जाए तो बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहता इस पिच पर। और आज जिस तरह से मुझे लगता है शायद तभी राजस्थान जो रॉयल्स है उसने गेंदबाजी चुनी है, और बड़े बड़े जो दिग्गज जो थे अभी ट्रेविस हेड और अभिषेक को उन्होंने आउट भी कर दिया है। देखा जाए दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मैच हुए हैं, जिनमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 और राजस्थान ने 9 मैच जीते हैं।
और जब हम आप बातचीत कर रहे हैं, इस बीच देखिए उनके 6 विकेट निकल गए हैं, और अवेश खान ने 2 गेंदों पे 2 विकेट लिए, मतलब ये ओवर तो खत्म हो गया इनका, लेकिन अगले ओवर में वो हैट्रिक पर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से उनका ये दूसरा ओवर था और हैट्रिक पर होंगे। इन्होंने पहले ही गेंद पर अब्दुल समद को आउट किया, और इसके पहले उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट किया। नीतीश रेड्डी एक इस सीजन में उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, तो कुल मिला के अब इनके जो 6 विकेट निकल गए, तो मुझे लग रहा है कि एक ही बल्लेबाज फिर भी वो बचे हुए हैं, और जिनकी हम बात कर रहे थे हेनरिक क्लासन और 23 गेंदों पर 29 रन बना के खेल रहे। देखना है कि ये कहां तक ले जाते हैं टीम को।
जी हां, क्योंकि आज का मैच दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है और आज की विजेता टीम रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। इस टूर्नामेंट से पहले क्वालिफायर में मैच में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। टेबल टेनिस में ब्राजील के रियो द जेनेरियो में डब्ल्यूटीटी कंटेंडर में मानुष उत्पल भाई शाह और मानव विकास ठक्कर की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ब्राजील के हेनरिक नोगुटी और जून शिम को 3-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना ब्राजील की ही जोड़ी फेलिप डोटी और लुकास रोमांस्की की जोड़ी से होगा। देखा जाए तो जो टेबल टेनिस का जिस समय मुकाबला चल रहा है उसमें सिर्फ यही जोड़ी चली है जो आगे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। बाकी महिला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भी हम हार गए, पुरुष सिंगल्स के और जो महिला सिंगल्स के मुकाबलों में भी हम हार गए।
बिल्कुल, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो मानव ठक्कर है ये भी लगातार कंसिस्टेंटली अगर देखें तो ये क्वार्टर फाइनल में पहुंचना और दूसरे तीसरे राउंड तक आगे बढ़ना इनके रिजल्ट रहे हैं, बट असली चुनौती अब शुरू
होगी।
तो क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ते हैं और फिर सेमीफाइनल पे पहुंचते हैं और जीतते हैं तो बड़ी बात होगी, लेकिन यहां तक वो पहुंचे हैं तो इन दोनों से उम्मीद करनी चाहिए।
अब बात टेनिस के कोर्ट की। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को इस साल लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद फ्रेंच ओपन के मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिल गया है। 26 मई को पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में उनका सामना दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी रूस के करेन खाचानोव से होगा। जो सुमित नागल का इस साल प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, उन्होंने इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलिया ओपन में अलेक्जेंडर को हराकर जीत के साथ शुरुआत की। इसके बाद चेन्नई ओपन में भी जीत हासिल की और एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाई। तो अब भी कुछ उम्मीदें हैं उनसे?
बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि सिंगल्स में हम तो पिछले कई वर्षों से देखें तो डबल्स में हमने चाहे वुमेन्स डबल्स में है और सानिया मिर्जा खेलती रही हैं और चाहे मेंस डबल्स की बात करें हमारे पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं और अभी भी बोपन्ना तो खेल ही रहे हैं और काफी दिनों तक हमारे पास लिएंडर पेस और दो हमारे सुपरस्टार महेश भूपति रहे हैं, लेकिन मिक्स डबल्स में भी अच्छे रहे हैं, लेकिन सिंगल्स में हमारा कोई अच्छा प्लेयर नहीं रहा है बहुत जो आगे तक गया। सुमित नागल जिस तरह से ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में दूसरे राउंड तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि 2019 में प्रजनेश गुणेश्वरन के बाद फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में क्वालिफाई करने वाले नागल हैं अब।
बिल्कुल बिल्कुल।
और राष्ट्रीय चैंपियन सचिन सिवाच ने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए दूसरे मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर के पहले दौर में 57 किलोग्राम भार वर्ग में न्यूजीलैंड के एलेक्स मुक्का पर दबदबे भरी जीत दर्ज की है। स्ट्रेटजर मेमोरियल के स्वर्ण पदक विजेता सिवाच ने पूरे मुकाबले के दौरान दबाव बनाए रखा और 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से भारत को जीत से शुरुआत मिली, क्योंकि ये भी क्वालिफायर बहुत जरूरी है भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पक्का करने के लिए।
बिल्कुल, देखिए पुरुषों की हम बात करें तो जो अभी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले हमारे बॉक्सर्स हैं, तो महिलाओं में तो निखत हैं और प्रीति पवार हैं और लवलीना हैं, लेकिन पुरुषों में अभी भी इंतजार है कि कौन प्लेयर करता है। तो जाहिर है हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे बॉक्सर्स अभी ये अच्छा किया इन्होंने वहां से एक अच्छी खबर मिले।
और जाते जाते बात हॉकी की। बेल्जियम में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज प्रो लीग के एक मुकाबले में मेजबान बेल्जियम से 1-4 से हार गई। भारत की ओर से एकमात्र गोल अभिषेक ने किया। कल प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों का मुकाबला बेल्जियम से ही होगा। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। संजीव जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
नमस्कार
श्रोताओं, अब अनुमति दीजिए प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।